या आयुर्वेदा से चश्मे का जो नंबर है वो रिवर्स हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है। 30-40% पेशेंट्स में हमने देखा है कि चश्मा उतरता भी है।
तो फिर इस पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा?
क्योंकि यू हैव अ ब्रेड बटर, आपके लेजिक सर्जरीज और आपके लेंसेज, चश्मे, 100% बिजनेस जो है उस पे रिलेटेड है।
फूड्स हैं जिनसे आई बेटर होती है,
जैसे आंवला हो गया, कैरेट हो गया, ग्रीन वेजीज हो गए, उससे बहुत फायदा होता है। आई कैन नॉट से दैट कि विजन इंप्रूव हो जाता है, आई कैन से दैट कि मेंटेन हो सकता है।
एकदम बेसिक चीजें कौन सी जो हमें ब्लाइंड कर सकती है?
स्लीप साइकिल, आप स्ट्रेस में रहते हैं हर समय, और स्मोकिंग मेजर इशू है।
जो लोग कलर्ड लेंसेज पहनते हैं, पहनना चाहिए?
फर्स्ट टाइम ही आपको लग रहा है कि मेरे को इरिटेशन हो रही है तो आप उसको बिल्कुल हटा दें और कभी लगाए भी ना।
ठंडे पानी से लोग जो आंखों पे एकदम पानी डालते हैं बहुत ज्यादा, क्या प्रॉब्लमेटिक है?
दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि जब हम अपने आंख में छींटे मारते हैं ठंडे पानी से तो हमारा जो लुब्रिकेंट है आईज का वॉश आउट हो जाता है, हमें ड्राइनेस और बढ़ती है उससे।
लेसिक सर्जरी के साइड इफेक्ट क्या होते हैं लॉन्ग टर्म?
आपको ड्राइनेस इश्यूज बहुत आ जाते हैं। अगर आपका रेटिना वीक है, 5-6 ईयर्स बाद आपको दोबारा से नंबर आना शुरू होता है, विजन लॉस बहुत तेजी से होता है।
आयुर्वेदा में ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जो एलोपैथी में नहीं है? आज का ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करी है तो प्लीज़ फॉलो दिस शो। मेरे नाम के नीचे फॉलो बटन होगा, उसे दबा दीजिए, क्योंकि हमें उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एंड एट द सेम टाइम मेरी पूरी टीम का मोटिवेशन हाई होता है, जिससे हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर एपिसोड्स लाते रहेंगे ताकि आप कम से कम समय में एक बेहतर इंसान और एक बेहतर लीडर बन सकें। क्यों एलोपैथी डॉक्टर्स आयुर्वेदिक मेडिसिन को रेकमेंड नहीं करते? क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन से सीरियस डिसीजेस क्योर हो सकती हैं? क्या परमानेंट ब्लाइंडनेस को स्टॉप किया जा सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन से? क्या बेटर है आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथी? ऐसे कई सारी क्वेश्चंस का आंसर आज के पॉडकास्ट में हमें मिलेगा। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मनदीप सिंह बासु, द डायरेक्टर ऑफ जगत फार्मा एंड आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट। डॉक्टर बासु बोलते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, एंड अब इतने सारे पॉडकास्ट डॉक्टर्स के साथ बनाने के बाद मुझे भी ये रियलाइज हो रहा है कि हमारे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण हमारी चेंज लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट एंड खाना है। बिकॉज छोटे छोटे हैबिट्स एंड एनवायरमेंटल चेंज जो हमारे आसपास हो रहे हैं वो हमारी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो इश्यूज डिसीजेस में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए हम फिगरिंग आउट पे अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स लाते हैं कि हम सब आप सबको एजुकेट कर पाएं अपनी हेल्थ के बारे में, जिससे आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को बेटर केयर कर सको। प्लीज एंजॉय टुडे शो। जितने डॉक्टर्स मैं अभी रिसेंट में मिलते जा रहा हूं, जो बहुत हैवी रिसर्चर्स हैं वर्ल्ड लेवल पे, उन लोगों को बहुत सारे रिकॉग्निशन मिले हैं, रिनोन्ड हैं, राइट? एंड इस पॉडकास्ट में भी कुछ डॉक्टर्स आए हुए हैं, वो सब आयुर्वेदा को इतना ज्यादा, हाउ डू आई टेल यू, इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते हैं? या वो मोर देन इम्पोर्टेंस, आई थिंक इम्पोर्टेंस तो देते हैं वो, पर वो इतने ज्यादा अगेंस्ट क्यों हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको ज्यादा ट्रीट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी डाल के दे देते हैं? So, एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था अभी रिसेंटली कि एक बहुत ही बड़े डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ओनली 1% आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अच्छे हैं जो एक्चुअल ट्रीट कर सकते हैं और वो उनको ट्रीटमेंट आता भी है। 99% जो डॉक्टर्स हैं वो इधर उधर से कहीं भी बैठ के अपनी दुकान चला रहे, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा क्योंकि उनके पास कोई भी रिसर्च नहीं है। दिस वॉज देयर ब्लैंकेट स्टेटमेंट। अब वो 1% पे वो बहुत खुश थे, उन्होंने 3-4 नाम भी मुझे बताए कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग अच्छे हैं, ये लोग अच्छे हैं। बट वाई इज लाइक दैट? क्यों ऐसे सब लोग, बहुत ज़्यादा एक नया ट्रेंड आ गया वेयर इतनी हमारी जो एंशियन ओल्ड हिस्ट्री है जहाँ पे सब आयुर्वेदा से ट्रीट होता था, गवर्नमेंट फोकस कर रही है, उसके बाद भी लोग इसको ऐसे अगेंस्ट क्यों देखते हैं?
अगर हम आयुर्वेद को देखें तो आयुर्वेदा दो तरीके से देखी जाती है। एक की जो पुरानी एंशियंट हिस्टोरिकल जो हमारी बुक्स में लिखी हुई थी एंड जो प्रैक्टिस चलती आ रही है, जो वैद्स ने प्रैक्टिस करी एंड उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, आगे उसके हिसाब से चल रहे हैं। और एक जो एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, जिसमें लास्ट फ्रॉम 15-20 ईयर्स काफ़ी काम भी हुआ है, स्पेशली इन दिस गवर्नमेंट काफ़ी इस पे आयुष मिनिस्ट्री ने काम किया है एंड दे आर डूइंग द MOUs विद द हेल्थ मिनिस्ट्री एज वेल। कि एनीमिया पे अभी लास्ट में, अभी 3 डेज पहले मैंने देखा कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने और आयुष मिनिस्ट्री ने आपस में MOU साइन किया। तो जो डॉक्टर्स हैं ना वो सेकंड वाले जो आयुर्वेद फेज है उस पे नहीं जाते हैं, वो पहले वाले जो आयुर्वेद जो पुराना चल रहा है जिसमें उस लेवल पे एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं थे तो उसको ऊपर ही फोकस करते हैं, सेकंड वाले को बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम रिसेंट स्टडीज़ देखें तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसपे रिसर्चेज हुई हैं और ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, एंड काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं आयुर्वेद के जहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल भी रहा है इसको लेके। एंड अगर आप बात करें, बिकॉज मॉडर्न साइंस इज ऑल अबाउट सर्जरी, तो सर्जरी से बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं, एंड आयुर्वेदा इज ऑल अबाउट यू नो आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना, आपके डाइट को चेंज करना, आपको मेडिसिन से विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स ठीक करना। तो ये सब चीज़ें हैं, एंड ये सब चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं एक टाइम पे आके कि, एंड इफ़ यू सी फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स तो कितनी सारी आयुर्वेदिक कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एंड स्पेशली बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट अपोलो हॉस्पिटल्स, मेदांता हॉस्पिटल्स, उन्होंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स भी खोलने शुरू कर दिए हैं। अभी दिल्ली में रिसेंट आयुर्वेद करके अपोलो ने हॉस्पिटल खोला है, मेदांता हैज़ अ फुल सेक्शन ऑफ आयुर्वेदा इन देयर हॉस्पिटल, सो दे आर ऑल्सो शिफ्टिंग। बट ये है कि हाँ, क्योंकि इफ़ यू सी 15-20 ईयर्स बैक तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से दे ट्राई टू शिफ्ट टू द एलोपैथिक प्रैक्टिसेस, कि वो अपने पढ़ाई करने के बाद दे गो टू अ एलोपैथिक हॉस्पिटल और मॉडर्न साइंस में जाके वो वहीं पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे थे। दे वर नॉट डूइंग आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस क्योंकि वो कॉन्फिडेंस दिया नहीं जा रहा था। लेकिन अभी बिकॉज सो मैनी कंपनीज हैव कम जिन्होंने बहुत अच्छे रिसर्च काम करे, एंड बहुत सारे जो पुरानी कंपनीज भी थी आयुर्वेद उन्होंने काफ़ी अच्छा R&D है किया है अपने प्रोडक्ट्स पे जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो अभी चीज़ें बदल रही हैं बहुत।
तो डू यू ऑल्सो फील कि ये क्योंकि एक मॉडर्न मेडिसिन की लॉबी है, रिसर्चेज हैं, उसकी वजह से उसको इंडिया के जो ओल्ड वे ऑफ ट्रीटिंग उसको दबाया जाता है?
बिल्कुल दबाया जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट अस ऑल्सो, लाइक वी हैव डन द रिसर्च 40 ईयर्स बैक, एंड ये आई में बहुत अच्छा रिसर्च था, एंड अगर मुझे ये लगता है या मेरे फादर से मेरी बात होती तो कहते हैं अगर एलोपैथ में ये रिसर्च होता तो आज शायद मुझे नोबेल प्राइज मिल गया होता इसके लिए, बिकॉज वी आर क्योरिंग सो मैनी डिजीज जिसका ट्रीटमेंट है ही नहीं कहीं, बिकॉज इट्स आयुर्वेदा एंड हम विदाउट सर्जरी चीज़ों को ठीक करते हैं, बीमारियों को ठीक करते हैं, तो इसलिए उसको दबाने की कोशिश तो करी जाती है। बट इफ़ द रिजल्ट आर देयर एंड पेशेंट्स आर सेटिस्फाइड तो उसको दबा नहीं सकते। दैट्स वाई फ्रॉम लास्ट कंटिन्यूस 40 ईयर्स वी आर ट्रीटिंग लॉट्स ऑफ पेशेंट्स नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये चीज़ें हैं, बट रिजल्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वालिटी नहीं है ना तो फिर प्रॉब्लम है। तो वी हैव डन द वर्क ऑन द क्वालिटी एज वेल, उसकी सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल ट्रायल्स, एविडेंस बेस्ड केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीज़ें हैं आपके पास तो यू कैन डू वंडर्स इन आयुर्वेदा।
तो मतलब देन लॉबी का इतना फर्क नहीं पड़ेगा?
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पेशेंट्स को ट्रीटमेंट चाहिए, और पेशेंट को जब ट्रीटमेंट नहीं मिलता है ना तो, और कहीं आयुर्वेद में या दूसरी पैथी में जाके मिलता है, तो अगर वो पेशेंट सेटिस्फाइड है तो फिर कोई प्रॉब्लम
कुछ नहीं कर सकते। बट हियर्स अ क्वेश्चन विच यूजुअली जो फार्मा लॉबी होती है, जो मेडिसिन लॉबी है, वो ये बोलती है आयुर्वेदा के अगेंस्ट की रिसर्च बेस्ड कुछ नहीं होता, एविडेंस बेस्ड कुछ नहीं होता। अगर आपको एक मेडिसिन बना के एलोपैथी में लॉन्च करनी है इंडिया में तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, उसकी फैक्ट्री एक सर्टन वे पे होना चाहिए, एक बाल का तिनका भी अगर आ गया तो कैंसिल हो जाएगी, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं।
बिल्कुल होते
हैं। जिसके बाद ही वो मेडिसिन एक बन के आगे बढ़ जाएगी, राइट। वेर आयुर्वेदा जो कोई भी अगर अपनी क्रीम से लेके मेडिसिन में कुछ भी, वो बस इंग्रेडिएंट का नाम लेके कुछ भी डाल सकता है, आपको उसका सोर्स नहीं ट्रैक करना, आपको किस कंडीशन में बनती है वो ट्रैक नहीं करना, बहुत इजीली लाइक कंपैरेटिवली अगर आप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की फैक्ट्री देखोगे वर्सेस एक एलोपैथी मेडिसिन की फैक्ट्री देखोगे, दोनों बहुत डिफरेंस होता है। कोई तो उन लोगों का सबसे ज़्यादा बोलना ही होता है कि कोई भी कुछ भी डाल सकता है, तो कुछ भी डाल देगा तो फिर चलेगा। जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज अ लास्ट कॉन्वर्जेशन इज वेल, कि मान लो आप गाजर अच्छी चीज़ है, राइट, तो जस्ट बिकॉज गाजर अच्छी चीज़ है इसका मतलब थोड़ी गाजर का कुछ भी बना के मैं एक ड्रॉप बना दूंगा या मैं कोई दवाई बना दूंगा जो लोगों खा लेना चाहिए। एंड आयुर्वेदा में यूजुअली ऐसे बहुत सारी ग्रे लाइंस होती है जहाँ से लोग ऑपरेट करके आगे बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई नो दिस, दे से कि वो आयुर्वेदा उनके डिविजन ही उनके पास ऐसा है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जहाँ पे क्योंकि उन्हें बहुत सारे अप्रूवल्स नहीं लेने पड़ते, फास्ट करना पड़ता है। तो अगर वो फास्ट लॉन्च कर देते हैं तो आयुर्वेदिक में लॉन्च करते हैं, नहीं तो फिर वो अपनी एलोपैथी डिविजन में डालते हैं।
देखिए अगर रिसेंटली आयुर्वेदिक कंपनीज की मैं बात करूँ, जो अच्छी कंपनीज हैं, वो भी उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जैसे एलोपैथिक वाले करते हैं। बिकॉज इफ़ यू वांट द सर्टिफिकेट्स, तो आप ऐसे ही किसी ऐसी ही कोई फैक्ट्री में आप दवाई नहीं बना सकते। रिसेंटली मैं अगर अपनी फैक्ट्री की बात करूँ, सो दैट इज़ ऑल्सो WHO GMP सर्टिफाइड फैक्ट्री। सो फॉर WHO GMP यू नीड टू डू दैट नॉर्म्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट इंग्रेडिएंट, वॉट योर उसका सोर्स का है, उस सोर्स को फिर आपको सर्टिफाइड कराना लैब से, ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स को सर्टिफिकेशंस पे डालना, देन इट गोज टू अ इन हाउस लैब, ठीक है, उस इंग्रेडिएंट को हम इन हाउस भी चेक करते हैं, फिर उसके बाद फिर इट गोज टू अ यू नो प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन का जो बनाने का तरीका है वो भी हम फॉलो करते हैं WHO GMP के नॉर्म्स के हिसाब से ही। तो ये जो बोला जाता है कि आयुर्वेद में कुछ भी डाल देते हैं, कैसे भी डाल देते हैं, वो वही जो मैंने बताया, जो पुरानी आयुर्वेद जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो वहाँ फोकस करके इसको बोला जाता है। जो नए कंपनीज हैं, जो नए लोग काम कर रहे हैं उस पर, उसको नहीं आगे प्रमोट किया जा रहा है, तो ये रीज़न है।
ओके, अब ने टर्म यूज़ किया WHO GMP फैक्ट्री। नॉर्मल फैक्ट्री और WHO GMP फैक्ट्री में क्या डिफरेंस होता है, और ये सर्टिफिकेट चाहिए क्यों होता है?
बहुत फर्क है, आई थिंक जमीन आसमान का फर्क है।
मुझे तो सिर्फ ये बताया कि अगर एक्सपोर्ट करना है तो इसलिए तुम्हें WHO GMP चाहिए।
अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट निकालना है तो, और क्वालिटी प्रोडक्ट देना है लोगों को, तो आपको नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, और उस नॉर्म्स को फॉलो करने के बाद फिर WHO CDSO जो हेल्थ मिनिस्ट्री का FDA भवन है, वहाँ से CDSO की टीम आती है एंड दे डू द इंस्पेक्शंस। सो इंस्पेक्शंस गोज फॉर 3-4 डेज, आपकी एक एक चीज़ को आके, एक एक डॉक्यूमेंटेशन को, हर चीज़ को वो बहुत बारीकी से देखते हैं, और आपका वे ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड, जो मुझे लगता है कि सब लोगों को लेना भी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सपोर्ट और या बाहर आपको मेडिसिन भेजनी है तब आप वो लो, मुझे लगता है कि सारी कंपनीज को लेना चाहिए। उससे एक फैक्ट्री का एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है, ट्रेनिंग्स बन जाते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो उसी ट्रेनिंग के हिसाब से काम करते हैं, तो प्रोडक्शन में कोई गड़बड़ नहीं आती है। एंड मुझे लगता है तो आयुर्वेद वालों को ज़्यादा करना चाहिए, ताकि बिकॉज सम हाउ अभी भी वी हैव टू प्रूव अवर सेल्फ कि इट्स नॉट क्वालिटी, और पता नहीं क्या डाल रहे हैं, कहाँ से इंग्रेडिएंट आ रहा है, कोई एविडेंस नहीं है। तो सबको करना चाहिए, जिससे आगे चल के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आयुर्वेद के ऊपर।
अच्छा एक क्विक क्वेश्चन बताओ, आपने बोला कि लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, एक टीम आती है, टीम आके पूरे सर्टिफिकेशन देती है, टेस्टिंग करती है, इंस्पेक्शन करती है, ये ब्राइब करके नहीं हो सकता?
नहीं हो सकता, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट WHO। बट अगर हम बात करें WHO GMP की, एंड स्पेशली इफ़ यू आर टेकिंग COPP इज सर्टिफिकेट ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो आपको आपके प्रोडक्ट पे मिलता है सर्टिफिकेट, और वो मिलता है WHO से, CDSC से, हेल्थ मिनिस्ट्री से, तो वहाँ पे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी फैक्ट्री आपने WHO GMP करा ली वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रोडक्ट को भी सर्टिफिकेट दिलाना इट्स something different. So if you talk about our eye drops, we got the COPP also from the WHO GMP CDSCO से.
ये आसान नहीं होता,
बिल्कुल भी नहीं,
ये तो bribe करके
it has taken 3-4 years for me उस पे काम,
even after having the product for 30-40 years.
yes
आपका signature एक eye drop है, right?
Yes,
Dr. Basu. तो वो सिग्नेचर आई ड्रॉप क्या ट्रीट करता है?
सो बहुत सारी बीमारियां ठीक करता है। लोग बोलते हैं एक आई ड्रॉप से कैसे इतनी सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। माय फादर वाज आल्सो सरप्राइज कि हो क्या रहा है कि इतनी सारी बीमारियों में इसका रिजल्ट आ रहा है। सो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, अगर हम स्टार्ट करें विद द इमैच्योर कैटरेक्ट, अगर आपका मोतियाबिंद पका हुआ नहीं है, तो दवाई से हम उसे दोबारा से हटा सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं कैटरेक्ट को, एंड आपका विजन भी वापस आता है। और एक बार आपका कैटरेक्ट डिसॉल्व हो गया तो वो दोबारा नहीं बनता, एटलीस्ट फॉर 15-20 ईयर्स, तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। इफ आई टॉक अबाउट ग्लूकोमा में क्या होता है, आँख का प्रेशर बढ़ता है, एंड ग्लूकोमा बाय द वे अभी जो सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस का कॉज है वो ग्लूकोमा है, एंड इन अदर 20 ईयर्स इट विल बी अ मेजर इशू, इस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे। सो ग्लूकोमा में आँख का प्रेशर बढ़ता है, सो प्रेशर के मेडिसिन वी ऑलवेज एडवाइस की जस्ट टेक प्रेशर मेडिसिन, वो आप मॉडर्न या एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि हमारी दवाई से प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है। बट प्रेशर बढ़ने की वजह से ग्लूकोमा में जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, जो दिमाग से विजन को लेके आ रही है वो खराब होनी शुरू हो जाती है, वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है, जिसका कोई इलाज नहीं है। उस नस पे हम काम करते हैं, जो ऑप्टिक नर्व डीजनरेट होती है हम उसको डीजनरेट होने से बचाते हैं ताकि पेशेंट ब्लाइंड ना हो। आई ड्रॉप से थोड़ा बहुत रीजनरेशन भी हो जाता है ऑप्टिक नर्व का, तो विजन थोड़ा सा इम्प्रूव भी हो जाता है और आगे खत्म नहीं होता। तो ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर ब्लाइंड की अभी आपने बात करी थी, सो कलर ब्लाइंडनेस पीपल से देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप कलर ब्लाइंड हो, आपको हेरिडिटी है, जेनेटिकल है, आपके रॉड्स एंड कोन्स नहीं है, तो आपको नहीं। वी हैव ट्रीटेड लॉट ऑफ पेशेंट्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस
स्पेशली थ्रू आई ड्रॉप,
जस्ट थ्रू आई ड्रॉप। बहुत सारे ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जो सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवेज में जाना चाहते हैं, जो पायलट बनना चाहते हैं, अब तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी इट इज कंपल्शन, उनको पता ही नहीं होता वो कलर ब्लाइंड है। सो वंस दे गो फॉर अ फिजिकल वो हो जाता है, एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं, और जो मेडिकल में जाते हैं तब उनको पता चलता है कि उन्हें कलर ब्लाइंड है। सो फिर वो होप ऑब्वियसली खत्म हो जाती है, बिकॉज वहीं पे बोल दिया जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, अब तुम कुछ और कर लो। तो सो उनको जब पता चलता है हमारे बारे में, सो पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनको हम कलर ब्लाइंडनेस ठीक करते हैं। आई एम नॉट सेइंग 100% सारे पेशेंट ठीक होते हैं, बट 60-70% ऐसे पेशेंट्स हैं जो रिकवर कर जाते हैं, उनको कलर्स दोबारा से पहचानना शुरू कर देते हैं और वो दोबारा जाके जॉब करते हैं।
व्हाट आर यू सेइंग?
यस, बहुत सारे पेशेंट्स हैं।
पर इसके ऊपर कोई रिसर्च, कुछ अप्रूवल्स कुछ है? मतलब लाइक हाउ कैन यू क्लेम दिस कि ये हो गया?
कैसे, क्या एविडेंस आप कह रहे हो? वी हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, दोज हु हैव गिवन इट इन ऑन राइटिंग कि मेरे को कलर ब्लाइंडनेस थी एंड फिर मैंने ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर बासु से एंड नाउ आई एम डूइंग जॉब। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ये बोलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद से भी नहीं हो सकती, इसमें मॉडर्न साइंस की ज़रूरत है। जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट अवर हॉस्पिटल, तो वी टेक द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हम डायग्नोसिस सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से करते हैं। इट्स नॉट लाइक डैट कि हाथ लगाया ना भी देखिए बता दिया क्या बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। सो वी डू ऑल द डायग्नोस, अगर रेटिना में प्रॉब्लम है तो वी डू द रेटिना स्कैंस, आपकी ऑप्टिक नर्व खराब है तो उसके टेस्ट होते हैं। आपका 100% मॉडर्न डायग्नोस के साथ हम सारे आपके टेस्ट करते हैं, बट द ट्रीटमेंट विद द आयुर्वेदा। तो ये दोनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन तो रिक्वायर्ड तो है ही, अकेले आयुर्वेदा भी कुछ नहीं कर सकता, और बहुत सारी डिजीज़ का ट्रीटमेंट मॉडर्न साइंस में नहीं है जो आयुर्वेद में। तो मुझे लगता है कि इफ़ आपके पास ट्रीटमेंट नहीं है तो डोंट से डैट कि कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है? यू कैन से कि यू कैन जस्ट गो एंड ट्राई द आयुर्वेदा, होम्योपैथी का आप कुछ भी ट्राई करके देख लो, हो सकता है वहाँ आपका इलाज हो जाए। आप ये मत कहो कि नहीं कोई इलाज नहीं, आप घर बैठ जाओ।
आप इन सब में हम लोग बात करते हैं आई ड्रॉप्स की, राइट? जो मार्केट में मिलने वाले आई ड्रॉप्स हैं एंड जो सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये कितने सेफ हैं?
सो देयर आर सो मेनी आई ड्रॉप्स, वन इज एंटीबायोटिक्स, वन इज स्टेरॉइड्स, जो कुछ डिजीज में दिया जाता है वो डॉक्टर के कंसल्टेशन से होना चाहिए। वन इज नॉर्मल ल्यूब्रिकेंट्स, जो बिकॉज ऑफ ड्राइनेस आज की डेट में सबसे मेजर इश्यूज हैं बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम, सो मेनी ल्यूब्रिकेंट्स जो अभी मार्केट में हैं। एंड वन देन हर्बल कैटेगरी आ जाती है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन आई ड्रॉप्स आ जाते हैं, दे आर वेरी लेस अभी, बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पर काम नहीं किया है। अगर आपको इरिटेशन है, कुछ भी है ना, तो पेशेंट्स क्या करते हैं, वो जाके मेडिकल स्टोर से कोई भी एंटीबायोटिक उठा लेते हैं, और इरिटेशन उनकी ठीक नहीं हो रही तो मेडिकल स्टोर से बोलते हैं कि यार क्या ड्रॉप दिया, फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो उसे स्टेरॉइड दे देता है कि इससे फ़ायदा हो जाएगा। सो इंस्टेंट रिजल्ट तो आ जाता है स्टेरॉइड का, बट उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे स्पेशल।
क्या है साइड इफेक्ट?
आपको कैटरेक्ट हो जाता है।
कैटरेक्ट क्या होता है?
मोतियाबिंद, जो आपको, जो आपका लेंस है वो ओपेक होना शुरू हो जाता है। सेकंड ग्लूकोमा, जो बहुत मेजर इशू है, आपकी आँख का प्रेशर बढ़ जाता है साइड इफेक्ट्स की वजह से। ये दो मेजर इशूज हैं जो सबसे
ज्यादा होते हैं। क्या होता है प्रेशर बढ़ना, मतलब उससे होगा क्या, अपना देखना बंद हो जाएगा, क्या होता है?
सो ग्लूकोमा इज लाइक कि दो तरीके का ग्लूकोमा होता है, वन इज ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड वन इज क्लोज एंगल। ओपन एंगल ग्लूकोमा में बेसिकली होता क्या, प्रेशर क्यों बढ़ता है आपका, हमारा जो हमारी आंख में जो पानी का ड्रेनेज है तो वो अंदर बाहर होता रहता है।
ओके,
एंड वंस वो ड्रेनेज जो है ब्लॉक हो जाता है तो पानी अंदर बाहर नहीं होता, और हमारी आंख के आईबॉल है उसमें प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, और जो हमारे पीछे ऑप्टिक नर्व को ड्राई करता है उसकी वजह से हमारा विजन लॉस हो जाता है। तो ओपन एंगल में क्या होता है कि वो पानी जो है वो चलता रहता है और हमको पता ही नहीं चलता कि हमारी आँख में कोई प्रॉब्लम आ रही है। इस बात से मुझे याद है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपकी आईसाइट वीक हो रही है तो उसको लाइटली मत लो। ऐसा मत करो कि जाके किसी ऑप्टोमेटिस्ट जाके चश्मा बनवा लिया कि चलो ठीक है नॉर्मल है। अगर आपकी आईसाइट वीक हो रही है तो यू शुड ऑलवेज नो द कॉज कि किस वजह से हो रही है, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेज हैं जिसमें पता ही नहीं चलता आपको कि आपकी नजर कमजोर हो रही है और आगे चल के आपका ब्लाइंडनेस आ जाती है बहुत जल्दी।
तो यू सेड कि एलर्जी होती है और एलर्जी के टाइम पे आईज अगर रेड हो जाती है या खुजली हो रही होती है आईज पे, तो लोग बहुत बार एलर्जी की दवाई ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, राइट? सो ये नहीं करना चाहिए
आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर सो मेनी मेडिसिन जिसका उस प्रॉब्लम में काम है। सो एलर्जीज आर डिफरेंट डिफरेंट।
सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ओके? सो आई हैव गॉन टू अ डॉक्टर एंड आई हैव गॉन इन लास्ट टू इयर्स एट लीस्ट टू थ्री फोर डिफरेंट डॉक्टर्स। मेरी आईज रेड हो जाती है बहुत,
एलर्जिक है,
ओके? आई डोंट नो किस लिए। मैं अगर कम सोता हूँ तो भी रेड होती है, ज्यादा सोता हूँ तो भी रेड हो जाती है। इट्स जस्ट कभी रेड होगी कभी नहीं होगी और मोस्टली रेड होती रहती है, right?
इचिंग भी होती है,
इचिंग बहुत कम
होती है, बस रेड हो जाती
है, बस रेड हो जाती है। इट्स नॉट इचिंग इज नॉर्मल, जिसने लाइट एक्सपोजर ज्यादा हुआ उस दिन इचिंग होगी, दैट्स वेरी डिफरेंट। एंड मैंने 3-4 एडवांस टेस्ट कराने की कोशिश करी, बहुत सारे चीजें कराई, कुछ निकला नहीं, कुछ भी निकला। सो दे डोंट नो द कॉज ऑफ व्हाई इट्स टर्निंग रेड। सो द जनरल इज कि आपकी ड्राई आईज हो जाती है, आपका लाइट एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, वो डाल दो, या जब एलर्जी हो तब सिट्रिजिन ले लो, बिकॉज वैसे भी एलर्जेंस स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा हाई है दूसरी।
अच्छा, ओके। हाँ, तो अगर इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आने वाले टाइम में, बिकॉज यू गेट यूज्ड टू इट कि अरे रेड हो गई खा लो।
मैं लेता नहीं हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि दिस वाज आई वाज एडवाइज्ड, बस
यू नो ना कि चीजों को कैसे मैनेज करना है, बट लॉट्स ऑफ पेशेंट्स दे डोंट नो, स्पेशली इन रूरल एरियाज बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं यार प्रॉब्लम हो रही है, दवाई खा लो चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो आदत में जब आ जाता है और बिकॉज योर आईज योर बॉडी गेट रेजिस्ट टू इट कि नहीं भैया इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं। एंड स्पेशली अब ये रेडनेस हो गया, ड्राइनेस इज अ मेजर इशू, एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड एक्सपोजर ऑफ स्क्रीन ऑल्सो। सो दिस डे डिजिटलाइजेशन जब से हुआ तो एवरी वन इज ऑन द मोबाइल लैपटॉप, ये बहुत बुरा हाल है। आई हैव सीन द पीपल जो पेशेंट्स आई टी में काम कर रहे हैं, वो वर्किंग फॉर 8 hours 10 hours, उनके विजन लॉस भी हो रहे हैं और ड्राइनेस मेजर है, ठीक है? तो उसके लिए भी नो वन इज टॉकिंग, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि बचाएंगे कैसे। एंड स्पेशली अब मैं बात करूँ अगर, तो फ्रॉम लास्ट 4 years वॉट आई हैव सीन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो बच्चों में, कि आफ्टर कोविड दे हैव स्टार्टेड यू नो यूजिंग द लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से सबसे ज्यादा पेशेंट्स मायोपिया के आ रहे हैं और बच्चों को ब्लैक बोर्ड तो दिख ही नहीं रहा है, एंड जब हम उनको टेस्ट करते हैं तो उनको चश्मा लगाने के बाद भी नहीं दिख रहा होता है। सो 30-40% विजन चश्मा लगाने के बाद भी नहीं है ऐसे बच्चों का, एंड वो बहुत मेजर इशू है। एंड अभी रिसेंट स्टडी भी आई थी एम्स की, जिसमें उन्होंने बोला कि 2001 में दे आर लाइक अराउंड 4-5% बच्चों को होता था, एंड 11 में इट वाज 13%, बट रिसेंटली 2024 में इट वाज अराउंड 22% जो बच्चों को मायोपिया है एंड वो ब्लाइंड हो रहे हैं, और इन 2040 इट विल बी 50% हर बच्चे को मायोपिया होगा, 50% ऑफ द किड्स वो होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम।
तो छोटे बच्चों को इतनी यंग एज में चश्मा क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है क्योंकि
वो मोबाइल देख
रहे हैं।
एक तो ठीक है कि नॉर्मल कमजोरी है, पीछे से रेटिना कमजोर है या फैमिली हिस्ट्री है कि फादर को भी मायोपिया था और आगे, तो वो एक अलग केस हो गया। लेकिन ओवरऑल जो अभी मैं देख रहा हूँ वो उनका स्क्रीन टाइम, क्योंकि बच्चों को हम मोबाइल दे देते हैं कि मुझे काम करना है तो बेटा खेलो, ठीक है, या इफ यू आर बिजी विद सम वर्क आप मोबाइल पकड़ा देते हो। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ एंड पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना, 3-4 घंटे, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मोबाइल किसका है, आप ही का है ना, तो आप दे रहे हो बेसिकली। नहीं डॉक्टर साहब मानता ही नहीं है, हम क्या करें? तो बेसिकली पेरेंट्स को ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट है जानना है कि आप अगर उनको मोबाइल दे रहे हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, और बच्चों को मायोपिया हो जाता है ना तो उनकी लाइफ में ना 17-18 साल के बाद आप बोलते हैं कि आप लेजिक लेजर करते हैं, लेकिन 18 ईयर्स तक उसको कितनी परेशानियाँ आती है। एंड स्पेशली विद द किड्स जो चश्मा लगा के पूरी तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उनको धुंधला ही दिख रहा है, तो वो एक मेजर इशू अभी आया है फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आयुर्वेद से अगर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द क्योर, वी शुड टॉक अबाउट द प्रिवेंशन, कि अब क्योंकि डिजिटल लाइफ है, स्क्रीन तो देना ही पड़ेगा, आपके होमवर्क्स आ रहे हैं, आपके क्लास में स्क्रीन लग चुकी हैं, तो उसके बदले में चश्मा इज नॉट अ क्योर या चश्मा इज नॉट अ प्रिवेंशन. अगर हम उसको उसकी आइज को स्ट्रेंथ दे दें या उसके विजन को इम्प्रूव करके रख लें या आगे उसका विजन कम ना हो तो वी शुड वर्क ऑन डैट ऑल्सो.
क्वेश्चन, स्क्रीन टाइम सिर्फ बच्चों का तो नहीं बढ़ रहा है, बड़ों का भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है.
बिल्कुल.
डू यू थिंक कि हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं और हम मोबाइल देखने के चक्कर में या स्क्रीन टाइम हमारा जो बढ़ते जा रहा है उसके चक्कर में हम बहुत ज़्यादा खुद को डैमेज कर रहे हैं?
बहुत ज़्यादा. इससे सिर्फ आपका विजन लॉस नहीं हो रहा, जो सबसे मेजर इश्यूज है ड्राइनेस. आपको ड्राइनेस हो रही है, देन यू आर कमिंग इनटू ल्यूब्रिकेंट, साइड ड्रॉप स्टार्ट हो रहे हैं, फिर उससे भी काम नहीं चल रहा है क्योंकि आईज उससे भी रेजिस्ट हो जाती है. देन फिर हम आपको आर्टिफिशियल ट्रीयर्स पे आना पड़ता है आपको, फिर उससे भी काम नहीं चलता. फिर आपको हर समय आपको ऑइंटमेंट्स लगाने पड़ते हैं आपको आई को ल्यूब्रिकेंट देने के लिए, लेकिन आफ्टर सम पॉइंट टाइप वो काम भी करना बंद कर देता है. दो रीजंस हैं, एक तो एयर कंडीशनिंग, उससे भी ड्राइनेस बहुत होती है. इफ़ यू सिटिंग इन द ऑफिस, एयर कंडीशन चल रहा है, स्क्रीन है, तो बेसिकली होता क्यों है ड्राइनेस? इसमें व्हेन यू ऑन द स्क्रीन तो आप कंसंट्रेट कर रहे होते हो स्क्रीन पे, तो हमारा जो ब्लिंक रेट है वो कम हो जाता है. ब्लिंकिंग जो 40 टू 50 टाइम्स होने चाहिए ना मिनट, इट कम्स डाउन टू 3 to 4 टाइम्स ओनली.
ओके.
और वो ब्लिंक ना होने की वजह से जो एक्चुअल नेचुरल ल्यूब्रिकेंट बनना चाहिए आइस में वो बनता नहीं है, वो ड्राई रहती है आइस.
30 to 40 to 4
हो जाता है. सो उसमें क्या होता है, ब्लिंक ना होने की वजह से ल्यूब्रिकेंट नहीं बनता है नेचुरल, और ड्राइनेस धीरे 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 जो ल्यूब्रिकेंट बनना होता है नेचुरल वो बंद भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बेसिकली दिस इज अ मशीन. वो मशीन नहीं चलेगी अगर इंजन नहीं चलेगा तो इंजन ऑयल जो है वो खराब हो जाएगा. तो वो वही सेम चीज विद आइज है. तो ये ड्राइनेस इज अ मेजर इशू. फिर अब जब हम स्क्रीन पे हैं, नियर विजन पे हम कॉन्सेंट्रेट करें बहुत लॉन्गर पीरियड टाइम, तो हमारा जो आईबॉल स्ट्रक्चर होता है वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है अपने आप को. और उसके बाद हम कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम लैपटॉप से हट रहे हैं, एंड वी स्टार्ट यूजिंग द मोबाइल. तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि गैप्स लेते हो स्क्रीन से, तो वही बोलते हैं हाँ सर लेते हैं. उसके बाद क्या करते हो, मोबाइल. तो स्क्रीन से गैप नहीं हुआ, आपने वैसे ले लिया,
बड़ी स्क्रीन की छोटी
स्क्रीन पे आ गए, बट आप वही कर रहे हो. तो इसमें आई कैन एडवाइस कि पेशेंट्स को जो है कुछ चीज़ें करनी चाहिए. सम आई एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. 20-20-20 फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें 20 टाइम्स हमें ब्लिंक करना चाहिए आइज को जब हम गैप ले रहे हैं, और 20 फिट की दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट वी कैन सी फॉर 20 सेकेंड्स, ताकि वो एडजस्टमेंट होना होता रहे फार विजन और नियर विजन में, ताकि जो आपका स्ट्रक्चर है वो आई बॉल जो है वो मायोपिया में ना बदले, फार विजन लॉस में ना बदले. तो ये तीन चीज़ें हम कर सकते हैं. वी डू सम एक्सरसाइजेस, जैसे आयुर्वेद में त्राटक इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. जैसे बंद कमरे में हमने कैंडल लगा ली अपने आई के उसमें, और उसको हम बिना आईज को बंद करें उसको कंटिन्यूस देख रहे हैं, ताकि जो जो कैंडल का जो लाइट है वो जब इधर उधर जाती है तो आपकी आई की मसल्स की एक्सरसाइज होते हैं, उससे बहुत फायदा मिलता लोगों को.
आई एक्सरसाइजेस वर्क करती है?
यू कैन नॉट से डैट कि इट विल इम्प्रूव योर विजन, बट ये है कि इट कैन हेल्प यू प्रिवेंशन में. ठीक है, आप बच सकते हैं, अपने विजन को थोड़ा बहुत बचा सकते हैं, लेकिन ठीक नहीं कर सकते. एक बार खराब हो गया देन यू नीड द मेडिकेशन.
स्ट्रेंथन कर सकते हैं
तो आई योगाज हो गए या जो भी, ये सब आपको स्ट्रेंथ देते हैं आईज को, बट इम्प्रूव नहीं कर सकते. इम्प्रूव के लिए यू नीड दैट मेडिकेशन.
और आपने इन सब की जो सेट कि हम एसी में बैठे रहते हैं, हम स्क्रीन ही देखते रहते हैं, तो इन सब की वजह से हम एक जो एक बहुत मेजर चीज़ है जो हमारी ह्यूमन बॉडी को चाहिए, सनलाइट, वो भी नहीं लेते हैं, बिकॉज हमारी लाइफ बिल्कुल कवर्ड शेल्स में होती है.
बिल्कुल.
तो सनलाइट का क्या इफेक्ट होता है आई पे? ज़रूरी होता है, नहीं होता है, अच्छी है, गंदी है, क्या है?
बेसिकली क्या है कि विटामिन डी के लिए तो रिक्वायर्ड है ही, क्योंकि आप देखो कि इंडिया में जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत मेजर हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं बॉडी में. दूसरी चीज़ ये है कि जब हम सनलाइट में नहीं निकलते हैं तो जो ब्लू लाइट जो प्रॉब्लम है, जो अभी आप ब्लू लाइट पे भी बात करेंगे हम, जो आजकल चश्मे यूज हो रहे हैं, तो हमारा जो सन है वो 15-20% ब्लू जो लाइट है उसे जनरेट करता है, और उसी की वजह से हमारी स्लीप और वेक साइकिल चलती है, और उसी के हिसाब से हमारा जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो सिक्रीट करता है जिससे हम सोते हैं. तो क्योंकि हम अंदर बंद कमरे में रहते हैं, लाइट का इतना एक्सपोजर नहीं होता और कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम पे होते हैं, तो हमारा स्लीप साइकिल, आपने देखा बहुत सारे आईटी है इनको नींद ही नहीं आती है रात रात भर, तो वो भी बिगड़ता है कहीं ना कहीं. और ऑब्वियसली आप नेचुरल लाइट का यूज नहीं कर रहे हो और नेचुरल एयर का यूज नहीं कर रहे हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो इफेक्ट तो करता ही है.
तो सनलाइट इफेक्ट करता है, बट सर डायरेक्ट आय का कोरिलेशन
नहीं,
कुछ भी नहीं.
नहीं नहीं,
डायरेक्ट आय का कोरिलेशन ही नहीं डायरेक्ट सनलाइट.
नहीं नहीं, बल्कि आपको सन गेजिंग, अब क्या है कि अब जो पुराने होलिस्टिक और जो पुरानी चीजें उसमें है कि सन गेजिंग बहुत अच्छी होती है, आप सन की तरफ देखो और उससे आपकी आंखें जो है विजन इंप्रूव होगा. आई थिंक वो मिथ है, ऐसा होता नहीं है.
अच्छा, कुछ नहीं होता
ऐसा, कुछ नहीं होता.
सन को देखना नहीं चाहिए
ऑब्वियसली. उसमें यूवी रेस तो होती है, तो डायरेक्ट सनलाइट जो है वो आपके रेटिना पे इफेक्ट कर सकते.
मॉर्निंग सनलाइट भी
हाँ, अगर उसमें रेज नहीं है तो उसमें आपको अच्छा लगेगा, बट वो कहीं कोई इम्प्रूवमेंट और विजन इम्प्रूवमेंट ऐसा कुछ नहीं होता सर.
कोई कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने चाहिए? इसके बेनिफिट्स क्या है या ड्रॉबैक्स क्या है?
प्रोज एंड कॉन्स हैं,
क्या है?
अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम की, तो आपको ड्राइनेस हो जाती है. अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेंसेज के साथ, तो आपको बहुत सारी परेशानियां आ सकती है. आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, आपको इन्फेक्शन आ सकते हैं, आपकी आईज रेड हो सकती हैं. ड्राई तो होती ही हैं अगर आपने सही से उसके लुब्रिकेंट का यूज़ नहीं किया. तो ये सब चीज़ें अगर आप सही से उसे कैरी करो, अब अराउंड 20-30% लोगों को तो सूट ही नहीं करता, उनको एलर्जी हो जाती है,
तो करना ही नहीं चाहिए.
हाँ, तो उनको करना ही नहीं चाहिए. हाँ, लेकिन फ़ायदा भी है उसका कि somehow, क्योंकि चश्मे के साथ देयर आर सो मेनी इश्यूज. आप इफ़ यू प्लेइंग स्पोर्ट्स तो आपको दिक्कत होती है. फॉर अ वाइडर एंगल चश्मे का आप एक लेवल तक ही देख सकते हो, तो लेंस के साथ आप वाइडर एंगल पे देख सकते हो चीज़ों को. और चश्मा नाक में रब करता है, कान में रब करता है, स्टीम आ जाती है उस पर, तो बहुत सारे इश्यूज हैं. तो वहाँ पे लेंसेज हेल्प भी कर देते हैं आपके. पर
ओवरऑल वुड यू रेकमेंड?
आई थिंक चश्मा इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि आईज में अगर आपको इरिटेशन या स्क्रैचेज या कोई भी ऐसी चीज़ आती है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है. बट इफ़ यू आर इन समथिंग जहाँ चश्मे को आप यूज नहीं कर सकते, तो फिर आप लगा सकते हैं लेंस.
जो लोग कलर्ड लेंसेज पहनते हैं जस्ट कूल दिखने के लिए, उनको करना चाहिए, पहनना चाहिए?
नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. समटाइम्स हाँ, एज अ कॉस्मेटिक, इट्स जस्ट लाइक अ मेकअप फॉर यू. कि समटाइम्स अगर आपको शूट कर रहा है, तो अगर आपको लगाने के बाद फर्स्ट टाइम ही आपको लग रहा है कि मेरे को ये शूट नहीं कर रहा है, मेरे को इरिटेशन हो रही है, तो आप उसको बिल्कुल हटा दें और कभी लगाए भी ना. लेकिन कुछ लोग लगा लेते हैं, आई से पानी निकल रहा है और रेड हो रही है आईज, तभी लगा के रख रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ सकती है, उनके कॉर्निया में भी स्क्रैचेस आ सकते हैं.
क्या आयुर्वेदा से चश्मे का जो नंबर है, क्या आयुर्वेदा से चश्मे का जो नंबर है वो रिवर्स हो सकता है?
डिपेंड्स कि कितना नंबर है, आई में प्रॉब्लम क्या है.
What are you saying? चश्मे का नंबर रिवर्स हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है. 30-40% पेशेंट्स में हमने देखा है कि चश्मा उतरता भी है, बट नॉट विद एवरी पेशेंट. नंबर काफी लोगों के कम हो जाते हैं और स्टेबल कम होते हैं. कि अगर आपका 4 नंबर है और 3 नंबर 2 नंबर पे आ गया,
तो फिर इस पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा?
अगेन आयुर्वेदा. सो चश्मे के नंबर पे कम होने पर इसलिए बात नहीं होती क्योंकि यू हैव अ ब्रेड बटर. आपके लेजिक सर्जरीज और ये सब चीज़ें, आपके लेंसेज, चश्मे, सब उससे रिलेटेड है.
पूरा हाँ business.
पूरा बिजनेस 100% बिजनेस जो है उस पर रिलेटेड है. इसलिए कोई चश्मे को उतारने पे या चश्मे के नंबर कम करने पे इस पर कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं.
बट गवर्नमेंट तो बात करेगी, गवर्नमेंट तो फोकस करेगी.
बिल्कुल करेगी और करना भी चाहिए. और हम तो बहुत सालों से ये काम कर रहे
हैं. आयुर्वेदा में अगर इतने सारे मिराकल्स हैं, तो आयुर्वेदा में ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जो एलोपैथी में नहीं है? कौन सी ऐसी चीज़ हो के स्पेशली वेर इट रिगार्ड्स व्हेन इट कम्स टू आई?
सो इफ यू लाइक हैविंग ग्लूकोमा, आपकी ऑप्टिक नर्व डिजेनरेट कर रही है, नो ट्रीटमेंट. आप डायबिटिक हो गए, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो आपका पर्दा खराब हो रहा है. सो दे आर टेम्पररी ट्रीटमेंट्स.
इन सब के आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट्स हैं?
मैं बताता हूँ. सो इफ यू टॉक अबाउट मॉडर्न साइंस, तो उसमें टेम्पररी ट्रीटमेंट्स है, उसमें हम इंजेक्शंस देते हैं, उसमें हम लेजर सर्जरीज करते हैं. बट वो 1-2 महीने आपको अच्छा लगता है, देन अगेन यू हैव टू गो विद द सेम प्रोसीजर्स लॉन्ग लाइफ. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पेशेंट कि वो 5 इंजेक्शन या 10 इंजेक्शन 20 इंजेक्शन या उसके बाद लगवाता रहे, तो एक टाइम पे आके वो रुक जाता है कि अब भैया रहने तो नहीं हो पाएगा. तो वहाँ पे आयुर्वेदा काम करता है उसका विजन को बचाने में, ऑप्टिक नर्व डिजनरेशन में काम करता है, रेटिना की जो प्रॉब्लम्स है जिसका ट्रीटमेंट कहीं नहीं है, सो वहाँ पे काम करता है. तो ये सब बीमारियां जिसका मॉडर्न साइंस में ट्रीटमेंट है ही नहीं, जो पेशेंट को मना,
और ये सब प्रूवन है, ये सब रिसर्च पेपर्स हैं,
बिल्कुल है, रिसर्च किया हुआ हमने,
और ये सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास होता है कि आपके पास?
नहीं नहीं नहीं, वी हैव डन द रिसर्च ऑन दिस, बहुत सारे डॉक्टर्स पे नहीं है, सम डॉक्टर्स इन केरला जो पंचकर्मा के थ्रू इन सब चीज़ों का इलाज करते हैं, बट वो बोलते हैं कि वी कैन स्टेबल इट, और बहुत सारे पेशेंट स्टेबल भी होते हैं, उनकी विजन बचती भी है, बट नॉट मैनी, बहुत कम है जिन्होंने, वी हैव डन द रिसर्च इसलिए वी हैव द ट्रीटमेंट, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है।
ओके, सो इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म जो हमारा सबसे एंशंट है, सबसे ज़्यादा जाना माना वाला है, जाना माना ट्रीटमेंट है या फॉर्म ऑफ मेडिसिन और लाइफस्टाइल है, वो आयुर्वेदा है। उसके बाद भी इस पे मॉडर्न वर्ल्ड में नॉर्मल लोग भी भरोसा ज़्यादा नहीं करते हैं। फॉरगेट डॉक्टर्स, उनकी लॉबी चल रही है,
बिल्कुल,
बट नॉर्मल लोगों ने भी भरोसा करना बंद कर दिया है। क्यों ऐसा? मे बी रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे इसीलिए।
आई थिंक अब ऐसा नहीं है, अब कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। अगर रिसेंटली आपने देखा हो, 3-4 ईयर्स में देयर आर सो मेनी कंपनीज जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स को लोग यूज कर रहे हैं, उसको दे गेटिंग द रिजल्ट्स ऑल्सो। पहले ऐसा नहीं था क्योंकि उस पर इतना काम नहीं होता था, ठीक है। और फिर हम बात करें तो बहुत पुरानी पैथी है, देन फिर उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए, फिर उस पर काम नहीं हुआ, फिर वो जला दिए गए, बहुत सारे गायब हो गया, फिर अब जो है वो दोबारा से, इफ़ यू सी अदर कंट्रीज, जैसे कंट्री लाइक चाइना, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे बहुत काम करती है, और ग्लोबली देखें तो उन्होंने
बहुत बात करती है
ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल मेडिसिन,
तो वो अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन पे बहुत काम कर रही है, एंड ग्लोबली बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहे
हैं,
और उन्होंने काफी मार्केट कैप्चर किया, जो आयुर्वेद का मार्केट होना चाहिए था आज के डेट में वो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में कन्वर्ट हो गया है। तो उस पर काम नहीं हुआ, उन्होंने काम, कंट्री ने काम किया उस पर, लेकिन अब जो है अब उस पर काम, आयुर्वेद पे काम होना शुरू हुआ है, एंड ग्लोबली इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, एंड इफ़ यू सी, अगर आप रिसेंटली देखें तो बिलियंस का बिजनेस जो है वो आयुर्वेद का होगा आने वाले टाइम में। दैट्स वाई मैनी फार्मा कंपनीज आर ऑल्सो शिफ्टिंग टू आयुर्वेदिक दिस थिंग, बट दे आर लाइक वो दूसरे तरीके से उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं उसको मॉडर्न के तरीके से उसको बना के, एंड देन नाउ दे आर डूइंग द प्रेजेंटेशंस एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, लेकिन वो हर्ब्स तो वहीं से उठा रहे हैं।
लेकिन आजकल चश्मे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को चश्मा लगते जा रहे हैं, एंड द ऑब्वियस ऑप्शन है इसकी लेसिक सर्जरी करा।
बिल्कुल,
क्या लेसिक सर्जरी इकलौता तरीका है चश्मा हटाने के लिए?
इंस्टेंट तो ऑब्वियसली कि आप गए और एक घंटे में आपका चश्मा उतर गया, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपकी आँख, आपका रेटिना, आपका कॉर्निया उस लेवल पे है या नहीं है, क्योंकि उसके भी टेस्ट होते हैं। नॉट एवरी पेशेंट कैन गो कि जाके मेरा चश्मा उतर, आपके टेस्ट होते हैं आप, और जो हाई मायोपिक पेशेंट्स होते हैं जिनके नंबर बहुत हाई होते हैं, उनको ऑब्वियसली उनके रेटिना में प्रॉब्लम आती है, होती है पहले से, तो उनके लिए लेजिक लेजर है नहीं क्योंकि उनको हो ही नहीं सकता। बट मैंने जो देखा है कि अभी जो रिसेंटली बहुत सारे लोग जो मेरे पास आ रहे हैं लेजिक लेज़र, जिन्होंने 10 साल पहले, 12 साल पहले या 5-6 साल पहले भी लेज़र कराया, उनके विजन फिर दोबारा से कम हो रहे हैं, क्योंकि वो पहले मायोपिक थे, पर्दा ख़राब था, उस टाइम चश्मा उतर गया, बट जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे डिजनरेशन दोबारा आ रहे हैं, और वो दोबारा आने की वजह से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनका विजन बहुत तेजी से कम होता है, चश्मा भी एक्सेप्ट नहीं करती आईज क्योंकि सर्जरी हो रखी होती है, तो उनके साथ बहुत परेशानी होती है। लेकिन स्पेशली हम आयुर्वेद से उस पोजीशन पे भी जाके वी कैन रिकवर, क्योंकि वी वर्क ऑन द रेटिना, द मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। अगर आपने रेटिना को ठीक कर दिया तो ये समझ लो आपकी 80-90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप क्योंकि पिक्चर तो वही बन रही है, तो वो जो बेसिक कॉज है ब्लाइंडनेस का, अगर वहाँ पर हमने काम कर लिया तो काफी लोग ब्लाइंड होने से बच सकते हैं।
पुराने जमाने में लेसिक सर्जरीज तो नहीं होती
थी,
तो वहां पे लोग क्या करते थे चश्मा हटाने के लिए या बेटर देखने के लिए वापस?
कुछ पहले पहले स्क्रीन टाइम्स भी नहीं थे उस लेवल पे, आप स्ट्रेस भी नहीं था आईज में, बट लोगों का विजन लॉस होता था, लैक ऑफ नॉलेज होती थी, लोगों को लगता था ऐसे ही अब चल रही है कहानी। और पहले जो वैद्य लोग थे वो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन थी, जैसे मैं बात करूँगा पुनर्नवा हो गया, उसका बहुत अच्छा यूज़ है, और अपामाग, पलाशी, ऐसे इंग्रीडियंट्स है जो आपके रिजुविनेशन में काम करते हैं, आपकी रीजनरेशन पे काम करते हैं। तो बहुत सारे वैद्य पहले उन दवाइयों को देते थे एज ए इंग्रीडियंट, और उससे फ़ायदा होता था लोगों
को। आर देयर एनी फूड्स, कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनसे जेन्युइनली आई बेटर होती है, आई साइट बेटर होती है, क्या खाना चाहिए अपनी आंखों की रोशनी और ताकत बढ़ाने?
आई कैन नॉट से डेट कि विजन इम्प्रूव हो जाता है, आई कैन से डेट कि मेंटेन हो सकता है, बहुत सारे
क्या ऐसे फूड्स हैं जिससे आंखों की रोशनी मेंटेन रहती है?
जो भी विटामिन ए जिनमें अच्छा होता है एज एंटीऑक्सीडेंट, जो इनका अच्छा रोल है, उन फूड से बहुत फायदा होता
जैसे?
है, जैसे आंवला हो गया, कैरेट हो गया, ग्रीन वेजीज हो गए, लीफी वेजीज हो गए, फिश हो गई, फुल ओमेगा रिलेटेड फैटी एसिड जिस भी
एल्गी,
हाँ यस, उससे बहुत फायदा होता है। लेकिन अगेन वो आपको मेंटेन कर सकते हैं, आपकी फुल बॉडी एंटीऑक्सीडेंट्स जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं, विटामिन ए की कमी जो है उसको कम ठीक कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट इम्प्रूव द विजन।
आयुर्वेदा से रिलेटेड मिथ्स क्या है और कौन सी ऐसी मिथ्स हैं जो आपको बहुत प्रॉब्लम करती है, जो आपको लगता है कि ये होनी नहीं चाहिए, एंड उसके बिहाइंड रियलिटी क्या है मुझे भी बताओ।
मिथ्स बहुत सारे हैं, लोगों को लगता है आयुर्वेद क्या है, एक रियल प्रैक्टिस नहीं है या लीगल प्रैक्टिस नहीं है, एक प्रोपोगंडा फैलाया जाता है आयुर्वेद को लेके कि ये तो क्वैक्स हैं, ये इनको दे आर नॉट डॉक्टर्स, तो ये एक थोड़ा सा माइंड सेट रहता है। सेकेंड प्रायोरिटी मानते हैं लोग कि जब कहीं कुछ नहीं होगा तो आयुर्वेद ट्राई कर लेते हैं, मेडिसिन में अगेन कुछ भी डाल देते हैं, बना देते हैं, ऐसा नहीं है, और क्लिनिकल ट्रायल नहीं होते हैं, इनका कोई एविडेंस बेस्ड नहीं होता, बहुत लंबा टाइम लगता है, साल भर बाद जाके फायदा होगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनका बहुत फास्ट रिजल्ट है, एंड हाँ डॉक्टर्स आर लाइक प्रैक्टिशनर्स, वो भी सेम कोर्स करते हैं और सेम टाइम में कोर्स करते हैं, बैचलर्स करते हैं, फिर आगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और जो उसके बाद अपनी सुपर स्पेशलिटी करते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके एक्चुअल क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सब मिथ्स जो है।
कैन आयुर्वेदा ट्रीट मेजर डिजीजेस? क्या आयुर्वेदा मेजर डिजीजेस को ट्रीट कर सकता है, जैसे कैंसर? जैसे बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक डिजीज हैं जिनके वर्ल्ड वाइड कोई इलाज नहीं है, आयुर्वेदा में कुछ इलाज है?
दे आर रिसर्चेस गोइंग ऑन, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, अभी कैंसर पे रिसर्च चल रहा है, जो अभी टाटा हॉस्पिटल में भी दे आर वर्किंग, दे आर लाइक मेडिसिन दे रहे हैं जिसमें हर्ब्स का भी यूज किया गया है, तो दे आर डूइंग द क्लिनिकल ट्रायल्स स्पेशली बिकॉज जिन चीजों में मॉडर्न साइंस में ट्रीटमेंट नहीं है तो दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस नाउ। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज भी उस हर्ब्स के इंग्रेडिएंट्स पे काम कर रही हैं, मुझे लगता है आने वाले 10-15 साल में बहुत सारी मेजर डिजीज हैं जो सिर्फ आयुर्वेद से ही ठीक हो,
जैसे
कैंसर हो गया, मैं आई की बात करूं तो जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है, वो हर्ब्स आयुर्वेद से ठीक हो रही है, और डायबिटीज उस पे हम कंट्रोल पा सकते हैं,
डायबिटीज पे कंट्रोल सिर्फ आयुर्वेदिक,
बिल्कुल पा सकते हैं,
बहुत रिस्की नहीं है,
रिस्की
अभी जो इंसुलिन लगाता है अब वो नहीं लगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन लेगा, बहुत रिस्की नहीं है,
बिल्कुल रिस्की है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन करके स्टार्ट करा जा सकता है, लोग काम कर भी रहे हैं इस पे, और एक बार जब आपको आपको लग जाए कि हाँ कि ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है जिससे फायदा हो रहा है, तो वाई टू टेक का इंसुलिन, आप इंसुलिन ले रहे हो या डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हो, कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स तो हैं उसके, तो अगर आप हर्ब से विदाउट एनी साइड इफेक्ट से अपने आप को ठीक कर सकते हो, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड आइडिया, पीपल आर वर्किंग ऑन इट, कंपनीज काम कर रहे हैं, रिसर्चेस चल रहे हैं, आयुष मिनिस्ट्री बहुत तेजी से काम कर रहा है स्पेशली विद द हेल्प ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे ऑल इंडिया है, वहाँ पे आयुर्वेद पे काम चल रहा है, रिसर्चेस चल रही है, और एनीमिया पे अभी हुआ है MOU साइन विद आयुष मिनिस्ट्री एंड हेल्थ मिनिस्ट्री, जिसपे वो एनीमिया पे, मेजर इशू है, तो वो उस पर भी काम चल रहा है, तो आई थिंक आने वाले टाइम में इट विल बी लाइक आयुर्वेद, आई ऑलवेज वॉन्ट कि आयुर्वेदिक फर्स्ट प्रायोरिटी बने, अगर आपको सर्जरीज की जरूरत नहीं है तो, इफ यू आर टेकिंग द मेडिसिन, आपको अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए जहाँ पे मेडिसिन है ही नहीं, तो आई थिंक एंटीबायोटिक स्टेरॉइड इज नॉट अ गुड ऑप्शन, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स अगर आपको कोई हर्ब्स ठीक कर सकते हैं तो बेटर ऑप्शन।
क्या ठंडे पानी से लोग जो मूड होते हैं और आंखों पे एकदम पानी डालते हैं बहुत ज्यादा, क्या प्रॉब्लमेटिक है कि कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मुझे लगता नहीं करना चाहिए, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया।
क्यों?
क्योंकि जब हम अपने आंख में बहुत छींटे मारते हैं ठंडे पानी से तो हमारा जो ल्यूब्रिकेंट है आईज का वो वॉश आउट हो जाता है और हमें ड्राइनेस और बढ़ती है उससे, क्योंकि हमारी आई अपने आप एक ल्यूब्रिकेंट, नेचुरल ल्यूब्रिकेंट बनाता है जिसकी वजह से हमारी आईज जो है वो ड्राई नहीं होती है, लेकिन जब हम पानी मारते हैं बहुत जोर से तो वो
ड्राई
ड्राई
हो
होती
जाती है,
रहती
तो इसकी वजह से नहीं करना
है। नहीं
चाहिए।
करना चाहिए।
लॉन्ग टर्म पर ड्राइनेस का ही है कि कुछ और भी साइड इफेक्ट होता है?
आई थिंक ड्राइनेस
क्योंकि एड्स में
इज
दिखाते हैं तो छप करके मारे।
नहीं
इनफैक्ट
तो
अभी मेरे साथ एक लाइफस्टाइल डॉक्टर थे, ही वाज लाइक इफ यू आर स्ट्रेस्ड जाओ पानी से 30 सेकंड 40 सेकंड मार दो
मुझे ऐसा लगता है कि पानी आंखों में बहुत नहीं मारना चाहिए। यू कैन वॉश योर फेस,
एंटायर
आपका
फेस
एंटायर
पर।
फेस अच्छे से पानी से, लेकिन आप डायरेक्ट अगर आईज पे अपने पानी मार रहे हो ना तो आपको ड्राइनेस और बढ़ेगा, आराम नहीं मिलेगा उस टाइम। यू विल फील बेटर बट आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स वो और ड्राइनेस बढ़ेगी आपकी आईज पे।
ओके, मुझे रेमेडीज बताओ ड्राई आईज के लिए, नेचुरल नेचुरल रेमेडीज फॉर ड्राई आईज।
नेचुरल रेमेडीज अभी अगर आप आयुर्वेद में जाना चाहते हो तो पंचकर्मा इज अ वेरी गुड, हैज़ अ वेरी गुड रिजल्ट्स ऑन ड्राई आईज। उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी थेरेपीज हम करते हैं जिसकी वजह से आपको ड्राइनेस में नेचुरली फायदा होता है। और अगेन अगेन प्रिवेंशन कैन हेल्प, और ल्यूब्रिकेंट्स और आर्टिफिशियल टीयर्स विल नॉट हेल्प यू। प्रिवेंशन अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको और ब्लिंक रेट को अपने आप ध्यान रखो तो ड्राइनेस से प्रॉब्लम बच सकती है।
क्वेश्चन अगेन, मेरे पास लास्ट 3-4 तो क्वेश्चन थे, मैं बार बार क्वेश्चन जैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने लिख के रखे थे। ठीक है, लेसिक सर्जरी के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं लॉन्ग टर्म, कुछ होते हैं?
बिल्कुल होते हैं। सर्जरी के बाद आपको ड्राइनेस इश्यूज बहुत आ जाते हैं, आपको सनलाइट में ग्लेयर पड़ना शुरू हो जाता है, आपको आफ्टर सम टाइम अगर आपका रेटिना वीक है और मतलब 5 6 ईयर्स बाद आपको दोबारा से नंबर आना शुरू होता है, और वो बहुत तेजी से आता है, और उसमें आपको चश्मा भी एक्सेप्ट नहीं करती आईज, तो विजन लॉस बहुत तेजी से होता है।
लेसिक
बट
के बाद
हाँ, बट नॉट विद एवरी पेशेंट, जिन पेशेंट्स का रेटिना वीक है उनके साथ ये मेजर इश्यूज आते ही आते हैं।
ओके, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स, एकदम बेसिक चीजें कौन सी जो हम डे टू डे करते हैं जो हमें ब्लाइंड कर सकती है?
स्क्रीन टाइम तो मेन है ही, स्लीप साइकिल, आप स्ट्रेस में रहते हैं हर समय, और स्ट्रेस ऑफ वर्क वो आपको मेजर इश्यूज करते हैं, आपके आईसाइट वीक होती है। स्मोकिंग मेजर इशू है, स्पेशली इन केसेस लाइक ग्लूकोमा, आपके ऑप्टिक नर्व में बहुत इफेक्ट करती है स्मोकिंग। आपके जो नर्व्स हैं उसमें बहुत इफेक्ट करती है, और मसल्स वीक होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, और आई थिंक ये मेजर इश्यूज हैं।
स्मोकिंग
अगर
कैन मेक यू ब्लाइंड,
हाँ बिल्कुल, आपके ऑप्टिक नर्व पे असर तो आता ही है स्मोकिंग से, और
रियली?
बिल्कुल आता है, स्पेशली जो मैंने बताया ग्लूकोमा केसेस हैं, जो ऑप्टिक नर्व वाले केसेस हैं उनमें तो बहुत तेजी से ब्लाइंडनेस पड़ती है।
वाओ। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज अबाउट बिजनेस, अबाउट मेकिंग मनी। एज एन आई डॉक्टर, एक इंसान थोड़े पैसे कमा सकता है क्योंकि उसकी लिमिट है कि 24 घंटे में से अगर वो 12 घंटे भी काम कर रहा है तो 12 घंटे में कितने ही पेशेंट्स देख लेगा
बिल्कुल
और फिर कितनी टीम बना देगा, सब एक लिमिट है, राइट? तो इसीलिए प्रोडक्ट में जाना, अगर आपकी रिसर्च स्ट्रांग है, आपके पास प्रोडक्ट बहुत कोई स्ट्रांग है जिसपे पेटेंट मिल गया तो प्रोडक्ट बना सकते हो उसमें, फिर आपके लिए स्काई इज द लिमिट एंड यू कैन
यस
गो, राइट?
यस यस
आई वॉन्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इज, अगर कोई सिर्फ डॉक्टर है तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कितना कमा सकता है पर मंथ इंडिया में, टॉप लेवल डॉक्टर?
बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा मतलब क्या होता है? जैसे जैसे हमने एक सेम क्वेश्चन पूछा था एक एलोपैथिक डॉक्टर से,
हाँ
वो बता रहे थे कि 40 से 50 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स, अच्छा जो काम करते हैं।
मुझे लगता है अगर आयुर्वेद में अच्छी प्रैक्टिस है आपकी और अच्छे रिसर्च वर्क है आपका, तो आई थिंक उससे 3 गुना ज़्यादा आप कमा सकते हो,
1-1.5 करोड़ रुपए महीना
आराम से,
कमा सकते
आराम
हैं
से कमा सकते हो,
विद
और
जस्ट प्रैक्टिस।
विद जस्ट प्रैक्टिस। और अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की बात करूँ तो ऑब्वियसली देयर इज अ लिमिटेशन इन प्रैक्टिस, क्योंकि स्पेशली विद अस प्रॉब्लम इज कि अगर आपने रिसर्च किया तो यू आर द फेस, तो पेशेंट ऑलवेज वॉन्ट कि मुझे इनको ही दिखाना है, इसी डॉक्टर को दिखाना है, एंड वी आर ट्राइंग, क्योंकि वी वॉन्ट, माई फादर्स ड्रीम वॉज कि इरेडिकेट करना है ब्लाइंडनेस को इस दुनिया से, वो रिसर्च भी इसलिए करा था उन्होंने, और आगे
मिशन भी इसलिए बना।
विजन भी ये है, मिशन भी वही है कि दुनिया से जैसे पोलियो को हटाया गया ना, मैं वो चाहते हैं कि ब्लाइंडनेस को हटाऊं मैं।
इंटरेस्टिंग, ऑल द बेस्ट विथ योर मिशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. प्लीज मुझे आप फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से हम बेटर होते हैं. आपके लास्ट एपिसोड में जो फीडबैक था ऑन मनोज वाजपेयी जी, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं रिसर्च कम करके गया था. नेक्स्ट टाइम से ऐसे लेजेंडरी लोगों के साथ अगर मैं बैठूंगा तो बहुत स्पेसिफिक रिसर्च करूंगा एंड उसके बाद आपको इससे भी बेहतर पॉडकास्ट डिलीवर करूंगा. प्लीज़ मुझे बताते रहिए, क्योंकि आपके फीडबैक की वजह से ही हम इस एपिसोड को, इस पूरे पॉडकास्ट को बेटर बना पाएंगे, ताकि इससे हम सब, हमारी फैमिलीज का, हमारे फ्रेंड्स का और पूरी कंट्री का बेटर हेल्थ केयर, बेटर माइंडसेट, बेटर ग्रोथ ला पाएं. अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फिगरिंग आउट.